भी मंत्र जाप तप दान पुण्य यज्ञ वेद पढ़ ले, उससे मैं देखा नहीं जा सकता। गीता में ये बात स्पष्ट कर दी भगवान ने कि उससे मैं देखा नहीं जा सकता हूं। तब फिर भक्ति योग की बातें 12वें अध्याय में भगवान करते हैं। अर्जुन पूछता है कि भगवान, आपकी अनन्य भक्ति में लगने वाले और अव्यक्त की उपासना में लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भावार्थ ये है, साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? अब उसके सवाल बदल गए। जब निराकार स्वरूप को देखा और फिर देखा कि कैसे ये तो देवताओं की पूजा तो अज्ञानता के कारण लोग कर रहे थे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे थे, तो अब भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, निराकार की भक्ति श्रेष्ठ है, निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? ये सवाल आपके मन में भी होगा कि अब किसकी भक्ति करनी चाहिए। सुबह भी मैंने कहा ना, वाया वाया में तो नहीं अटके हुए, तो क्या करना चाहिए? डायरेक्ट कनेक्शन करें ना अभी। तो भगवान ने भी यही उत्तर दिया, मुझ में मन लगाकर। देखो कितना, जिसको कहे ना चतुर जवाब है, लेकिन उस चतुर जवाब में जो उत्तर समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, वो समझ लेता है कि मुझ में मन लगाकर सदा योगयुक्त होकर के परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करता है, वे मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। मेरी उपासना माना ये मेरा ध्यान करता है, वह मेरे मत में सबसे उत्तम है। और फिर आगे भगवान उसको क्लियर करते हैं, जो लोग अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रखकर उस परम सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह करके अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। उत्तर मिला किसका ध्यान करने लिए कहा? अव्यक्त स्वरूप का, जिसकी कोई व्यक्त आकृति नहीं है, उस व्यक्त अव्यक्त स्वरूप निराकार स्वरूप। परंतु जो लोग मन को परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए उनका देह अभिमान उनके पुरुषार्थ में और प्रगति में बाधा डालता है, विघ्न डालता है। जो कहते हैं ना, भाई ध्यान में तो बैठते हैं, यहां भी कल मुझे कई लोग कह रहे थे ध्यान में तो बैठते, लेकिन वो निराकार का ध्यान ही नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अपने को देह समझ करके बैठे हैं, मैं फलाना हूं ये समझ करके बैठे हैं, तो यही विघ्न रूप बनता है। उसके लिए देह को भूलना और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करना जरूरी है। जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर एक व्यक्ति अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आता है? बच्चे याद आएंगे। पति समझता है तो पत्नी की याद आएगी। खुद को बच्चा समझता है तो उसके माता पिता याद आएंगे। अपने को वकील समझता है तो अपने क्लाइंट याद आएंगे। तो आत्म समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा विघ्न जो पड़ता है ये ध्यान में, वो है अपना देह अभिमान, जो प्रगति करने नहीं देता है। सिंपल उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि अगर दो वायर का कनेक्शन करना है तो दोनों का ऊपर का इंसुलेशन उतारना पड़ता है। अगर एक का इंसुलेशन ऊपर का उतारा, दूसरे का नहीं उतारा और वायर कनेक्ट करो, करंट पास होगी? नहीं होगी। दोनों का ऊपर का रबर उतारा फिर वायर को जोड़ो तो करंट पास होगी। ठीक इसी तरह ईश्वर को कोई भी आवरण नहीं है, निराकार है तो कोई भी आवरण, कोई भी इंसुलेशन है नहीं, उसका रबर तो उतरा हुआ है, लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा रबर चढ़ा हुआ है, इसलिए मन लगता नहीं है, इसके कॉन्शियसनेस में जितना रहेंगे तो वही देह की दुनिया याद आएंगी, दैहिक बातें याद आएंगी, देह के रिश्तेदार याद आएंगे, पदार्थ याद आएंगे, भौतिक चीज वस्तुएं, क्योंकि अपने आप में ये रबर चढ़ा हुआ है तो वो कनेक्शन होता नहीं, करंट पास होती नहीं है। इसलिए भारत में एक बहुत सुंदर प्रथा है जो इस बात को दर्शाती है कि आप मंदिर जब जाते हो ना तो क्या करते हैं, मंदिर के बाहर चमड़े की चीज को उतारने के लिए कहा जाता है, चमड़े का पर्स आदि भी होता है ना तो भी कहते हैं बाहर रख दो, है ना, वो चमड़े वाली चीज को अंदर लेके नहीं जाने देते हैं। चमड़े की चीज को बाहर उतारो, जूते चप्पल सब बाहर उतारो, फिर अंदर जाकर तिलक लगाते हैं, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर नमन करते हैं। ये प्रथा चलती आई, लेकिन सोचा नहीं कि ये प्रथा क्यों है। चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा, ये भी तो चमड़ा है ना, जिस चमड़े का मनुष्य अभिमान करता है, ये अभिमान का चमड़ा उतारने की बात है कि मंदिर के बाहर भगवान के सामने जब जाओ तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो। हमने स्थूल में वो जूते चप्पल उतार दिए, लेकिन ये चमड़ा जिसका अभिमान करते हैं वो अभिमान का चमड़ा नहीं उतारा। तो उतारना है तो पहले अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो, फिर अंदर जाके तिलक लगाया। तिलक लगाने का मतलब है कि मैं फलाना फलाना नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा, हे प्रभु मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा की कॉन्शियसनेस को विकसित करो, डेवलप करो, और उस कॉन्शियसनेस में स्टेबिलाइज होकर के फिर भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करो उस कॉन्शियसनेस, तो करंट पास होगी, तो ईश्वर से सर्व आशीर्वाद कृपा जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक प्रथा के रूप में ही करते आए तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। ये भी अनुभव कर लिया कि मनुष्य कितना भी मांगता रहता है भगवान के मंदिर में जाकर के, प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभिमान का चमड़ा उतारा ही नहीं, अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित किया ही नहीं, उस कॉन्शियसनेस में स्टेबिलाइज किया ही नहीं, तो भगवान से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? इसलिए कनेक्शन जुड़ा नहीं। तो इसीलिए भगवान ये भी बताता है कि निराकार की उपासना में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है, तो देह अभिमान ये सबसे बड़ा विघ्न डालता है जो प्रगति करने नहीं देता है। तो इसलिए अब जब भी ध्यान के लिए बैठो तो ये याद रखना कि मुझे अभिमान के चमड़े को उतारना है, मैं फलाना हूं ये कॉन्शियसनेस में नहीं बैठना है, लेकिन कौन से कॉन्शियसनेस को अपनाना है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इस कॉन्शियसनेस में बैठना है। और फिर भगवान कहते ये अभ्यास करो, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान मिल गया, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो कम से कम पहले बात से तो शुरू करें, अभ्यास से तो शुरू करें। बॉटम लाइन पर क्या है? अभ्यास है। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ध्यान लगने में कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एकदम थोड़ी लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा पहले तो। आज एक छोटे बच्चे को ये हाथ को प्रैक्टिस देनी होती है एबीसीडी लिखने के लिए, एबीसीडी खाली लिखाने कितना टाइम लगता है, वो चीज को अभ्यास कितना कराना पड़ता है, तब जाकर के एक साल के बाद उसको एबीसीडी लिखनी आती है। एक साल अभ्यास करना पड़ता है, उसमें तो जल्दी नहीं करते हैं ना। और अगर हाँ ये बच्चे को कंटाला आता है, नहीं लिखना है या रोज रोज एबीसीडी लिखनी है, क्या रोज रोज एबीसीडी, लेकिन आप उसको छुड़वा देंगे, चलो छोड़ो कंटाला आता है छोड़ दो नहीं लिखो, अरे आपको पता है कि यही बेस है उसके जीवन का निर्माण करने के लिए। अगर ये बेस ही कच्चा रह गया तो जीवन में क्या कर पाएगा बच्चा? अरे आपको पता है कि यही बेस है उसके जीवन का निर्माण करने के लिए। अगर ये बेस ही कच्चा रह गया तो जीवन में क्या कर पाएगा बच्चा? इसलिए कितना भी उसको अगर कंटाला भी आता है तो भी क्या कहते हैं, अच्छा तेरे को चॉकलेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुम इतना होमवर्क कर लो, चलो इतनी बार लिख लो एबीसीडी। स्कूल में भी वही एबीसीडी, घर में होमवर्क के लिए भी वही एबी, तब जाकर के एक साल के बाद रोज अभ्यास कराते चलो तब एक हाथ को एबीसीडी लिखना आता है। एक मन को ईश्वर में लगाने के लिए कितना समय लगेगा, कितना अभ्यास करना पड़ेगा? एक साल नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाथ में बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा अभ्यास घुटाना पड़ता है, बार बार घुटा। लेकिन मन के साथ बुद्धि है, एक बार उसकी समझ में कोई बात आ जाए। कई बार कई लोग हमें कहते हैं, बहन जी आपकी बातें इतनी अच्छी है लेकिन हमारी समझ में कम आती है। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए, एक बच्चे को भी जिस दिन पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ जाए उस दिन के बाद परिवर्तन। अब यह देखना है कि आपकी बुद्धि इन बातों को कितना जल्दी समझ पाती है, उतना टाइम लगेगा। अब आप एनालाइज करो कि आपकी बुद्धि कितना समय ले सकती है समझने के लिए। कई लोग पूछते ध्यान लगने में कितना टाइम लगेगा, आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आपकी बुद्धि इस बात को कितना जल्दी समझ पाती है। जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन के बाद परिवर्तन, उसके बाद घुटाने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उसके लिए कोई जपना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं। लेकिन समझना है, और जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई उस दिन के बाद चेंज, परिवर्तन। तब फिर 13वें अध्याय में भगवान